खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने यह मुमकिन किया है कि हम आज फिर इकट्ठे हैं। अमेरिका में जब भी मैं बच्चों के सामने कलाम सुनाता हूँ, स्कूल में जाकर कैंप जो लगते हैं, कैंप में क्या करते हैं बच्चे, दूसरे मुल्कों से, इलाकों से इकट्ठे होकर वहाँ पर बाइबल मुकद्दस को सीखते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सी गेमें खेलते हैं और फिर हर शाम खुदा के कलाम को एक घंटा वहाँ पर सिखाया जाता है और बहुत सी जिंदगियाँ वहाँ पर यीशु को कबूल करती हैं। और उन कैंपों का मकसद क्या होता है कि बच्चे यीशु मसीह के नाम को जानें। तो वहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ बहुत से लोगों के सामने हर सुबह और जब भी हम इब्तदा करते हैं अपने दिन की, मैं उनको ये बात कहता हूँ कि आज का दिन अच्छा है कि हम जिंदा हैं, आज का दिन अच्छा है कि हम सांसें ले रहे हैं, आज का दिन अच्छा है कि हमें जिंदगी हासिल है। इसी तरह आज का दिन बहुत ही अच्छा है कि अगर हम इस दुनिया से रुखसत हों, खुदा की हजूरी में पहुँचे। तो मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि आज का दिन अच्छा है जिंदगी के लिए और आज का दिन अच्छा है मरने के लिए। क्यों उनको ये बात सिखाई जाती है? क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इस दुनिया में मौत के नाम से डरते हैं कि मौत आएगी तो क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे कारोबार का, मेरे घर का, मेरा क्या होगा, मैंने इतनी दौलत इकट्ठी की है, मेरी इतनी जायदाद है, उसका क्या होगा। ये दुनिया के बहुत से अमीर लोगों की रात दिन सोच है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, दुनिया में सबसे पहले नंबर पर, उसका नाम दुनिया के तमाम दौलतमंदों में क्या गिना जाता था, सबसे ऊपर। और आप हंसेंगे भी और यकीन भी करेंगे, और वो जो सबसे अमीर आदमी था वो सिर्फ क्या खाता था, दही और दलिया। क्यों? उसकी दौलत की परेशानी ने दिन रात सोच कर डॉक्टरों ने उसे बताया कि तेरी ये फिक्रें, तेरी ये सोच जो तुझे लगी हुई है, ये तेरी बीमारी का बायस है। और वो कैसा बदनसीब हम कह सकते हैं कि जिसे खाने का कोई मज़ा नहीं मिल सका। क्यों? उसकी दौलत उसके लिए फिक्र, उसकी दौलत उसके लिए बीमारी बन गई, क्योंकि वो बहुत डरता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी दौलत के साथ क्या होगा, कौन संभालेगा। ये दुनिया के लोगों की सोच है, उन अमीर लोगों की सोच है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जब भी लफ्ज़ दौलत का इस्तेमाल करती है तो उसके पीछे खुदावन खुदा का कहने का मतलब क्या है। सो मेरे साथ निकालें इफिसियों पहला बाप उसकी 18वीं आयत। मेरे साथ सब कहें, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेराज के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद खुदा के जलाल की दौलत ईमानदारों में क्या है, क्योंकि जब भी बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ दौलत का आता है, बहुत दफ़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि पादरी सहबान लोगों को मुतवज्जा करने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए कह देते हैं कि अगर तुम मेरी ये बात को मानोगे, अगर तुम इस किस्म की दुआओं को या आयतों को याद कर लोगे तो तुम दौलतमंद हो जाओगे। बहुत दफ़ा पादरी सहबान पर अफसोस होता है कि वो अपने नफ़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, मैं भी पादरी हूँ, लेकिन हमें खौफ करने की ज़रूरत है इससे पहले कि अपना मुंह खोलें, इससे पहले कि तालीम दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिसाब हमसे लिया जाएगा, क्योंकि खुदा ने हमें मुकरर किया है कि आपकी रहनुमाई के लिए खड़े होकर बोलें खुदा की जगह। इसलिए बहुत दफ़ा खुदा के खादम, अफसोस से कहना पड़ता है लेकिन ये सच है, आप सब भी वाकिफ हैं इस सच से, मैं आपको गुमराह नहीं रखना चाहता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सच से गुमराह नहीं करती, हमें सच बताती है। बाइबल मुकद्दस हमसे शर्माती नहीं कि हम सच ना बोलें। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी सच से वाकिफ हों, इसलिए चाहता हूं कि मैं भी आपको सच बताऊं। तो यहां पर बहुत दफा ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बहुत दफा खुदा के खादम कह देते हैं, जबूर 23 पढ़ें जी, दिन में 50 बार 20 बार आपके घर में दौलत और खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां पर जो लफ्ज दौलत का या जबूर 23 में कहा गया है कि खुदावंद मेरा चिपान है, मुझे कमी ना होगी। जब दाऊद ने वो बात लिखी तो दाऊद अपने महल में बैठा हुआ तख्त पर शानो शौक से हुक्म नहीं चला रहा था। जब दाऊद नबी ने जब जबूर 23 लिखा तो वो किसी जगह बैठे हुए अच्छे खाने नहीं खा रहा था। जब दाऊद नबी ने जबूर 23 लिखा तो वो जिंदगी के खुशहाल लम्हों में से नहीं गुजर रहा था। ये उस वक्त का वाकया है, उस वक्त उसने जबूर 23 को लिखा जब उसका बेटा उसके मुखालफ हो चुका था, जब तमाम लोग दाऊद को मारने और दाऊद को दुख पहुंचाने के बारे में मगन थे। दाऊद उस वक्त अपना सब कुछ खो चुका है, दाऊद अपने घर से बेघर हो चुका है, उसकी बादशाही उसके पास नहीं, वो भागता फिर रहा है। तब उसने ये बात लिखी कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। बहुत दफा लोग कहते हैं कि हाँ खुदावंद मेरे साथ है क्योंकि मेरे पास मकान है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गड्ढा रेडी है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। तब लोग जायजा लगाते हैं कि तब लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम अमीर हैं तो खुदा हमारे साथ है। नहीं, हमें दौलत जैसी सोच अपनाने की जरूरत है कि दौलतमंद उसने कहने का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुझे कमी ना होगी, यानी कि अपनी तमाम कमियों में उसका ये यकीन था कि वो मेरी कमियों को पूरा करेगा। तमाम उसके ज़िंदगी के उन हालातों में वो इस बात को याद रखता है कि ये वही खुदा है जिसने जब मैं भेड़ों को चुराता था, जब मैं भेड़ों की देख चराता था, जब भेड़ों की देखभाल करता था, तो सैमुअल नबी को भेजा और कहा कि जाके यस्सी के बेटे को मखसूस कर दे कि मेरे लिए बादशाह ठहरे। दाऊद जानता था इस बात को, दाऊद को याद था कि खुदा ने किस तरह जाति जूलियट के सामने उसे खड़ा करके कहा कि जा और इस मर्दूद का सर काट कर सारी कौमों पर जाहिर कर दे कि इसराइलियों का खुदा, मसीहियों का खुदा जिंदा है। दाऊद ने ये बातें लिखी तब जब वो दुख में था, मुसीबत में था, कर्ब में था, हाथ हालात उसके मुखालफ जा रहे थे, उसकी हालत ऐसी थी जैसे भेड़ खोई हुई भेड़ हो। इसलिए वो अपने चरवाहे को याद रखता है, इसलिए वो अपने मालक को याद रखता है। चरवाहे का किसी को मतलब पता है? चरवाहे का मालक भेड़ा चुराने वाला और निगेबान, जैसे चाचा डीकन है रात को पहरा देता है, गडरिया क्या करता है, चुपान क्या करता है, भेड़े चुराने वाला क्या करता है, अपने भेड़ों की देखभाल करता है। खुदावंद खुदावंद यीशु मसीह के ने क्या कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो हमारी हर एक जरूरत, मुसीबत, परेशानी से बिल्कुल वाकिफ है। इस कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि पालूस रसूल कहता है, इफिसियों 1 उसकी 18 आयत को मेरे साथ पढ़ें, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। हमारा बुनाने वाला चरवाहा यीशु मसीह जिंदा है। और आगे आज के एतवार के पैगाम में हम 19वीं आयत में से देखेंगे कि उसने जो कुदरत दाऊद नबी को बख्शी जब उसका बेटा अबिसलाम उसके खिलाफ हो चुका था, जब सौल बादशाह उसको मारने को था, जब कौमें उसकी मुखालफत में थी, जब वो बियाबानों में था, उस कुदरत ने उसे महफूज किया, उस कुदरत ने उसे ये गाने के लिए कहा कि मैं किथे भी भज जावा, किथे भी लुक जावा, जमीन दी तह, आसमान ते, पानी दे थले, किथे भी चले जावा, खुदा उथे मौजूद आ। इसलिए पालूस कहता वा और उसके मेरास के जलाल की दौलत मुकसों में कैसी कुछ है। यहाँ पर जो लफ्ज़ दौलत का इस्तेमाल हुआ है, पालूस का कहने का मतलब है रूहानी दौलत, रूहानी अहमियत, रूहानी तौर पर जो उसने बरकात हमें दी है, जो उसकी मेरास को यानी के उसके लोगों को हासिल है। सबसे पहले हमें खुदावन खुदा ने जो अपनी दौलत से नवाजा है, अपने रहम की दौलत से, अपनी शफकत की दौलत से, अपने करम की दौलत से, उसे हम पढ़ सकते हैं इफिसियों पहला बाप उसकी 7 आयत। और यहाँ पर पालूस कहता है हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल के दौलत के मुआफिक हासिल है। खुदा के फजल की दौलत जो बयान से बाहर है, जिसे हम समझ नहीं सकते पूरे तौर पर, जिसे हम नाप नहीं सकते पूरे तौर पर, क्योंकि कोई ऐसा फीता इस ज़मीन पर नहीं बना जिससे हम खुदा की फजल की दौलत नाप सकें। और फिर इफिसियों 3 बाप उसकी 8 आयत में पालूस रसूल कहता है कि मैं उस फजल की दौलत से वाकफ हुआ, उसने ये फजल मुझ पर किया, उसने मुझे जो भगोड़ा था, मुझे जो खुदा के खिलाफ था, मुझे जो अपनी नज़र में खुदा की इबादत कर रहा था, मुझे जो अपने सोचने के मुताबिक कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मुझे चुना जो खुदा के लोगों को दुख पहुंचा रहा था, मुझे चुना जो खुदा के खिलाफ चल रहा था, मुझे चुना जो इस दुनिया में हकीर और नाचीज था। और इफिसियों 3 बाप उसकी 8 आयत में वो कहता है मुझ पर जो सब मकसों में छोटों से छोटा हूं ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं। बेकयास का मतलब यानी कि बयान से बाहर, जिसको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, इंसानी दिमाग, इंसानी सोच, सिर्फ खुदा उस दौलत, उस बेकयास मोहब्बत, उस दौलत को, उस अहमियत को जानता है जो चाहता है कि पालूस रसूल के वसीला से हम जानें। ये खुदा की ख्वाहिश है कि आप सब इस दुनिया में, जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि अमेरिका में वो सबसे अमीर शख्स था लेकिन उसकी खुराक क्या थी, दही और दलिया, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खा सकता था, बावजूद उसके पास दुनिया की तमाम दौलत थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर था रुपए पैसे के लिहाज से, लेकिन रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा गरीब था। आप इस दुनिया में और जहाँ कहीं भी और कोई अगर यीशु मसीह को जानता है तो वो सबसे अक्लमंद आदमी है। अगर कोई यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाया है तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर बेटी और बेटा है रूहानी तौर पर। अगर इस ज़मीन पर कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो वो इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आज दुनिया की ताकत दौलत में है, आज दुनिया की ताकत इल्म में है, लेकिन ईमानदारों की जो ताकत है वो खुदावंद में सुकूनत करती है। इसीलिए इफिसियों 3 बाप उसकी 16वीं आयत में पालूस रसूल कहता है कि खुदा चाहता है कि हम इस दौलत से, इस भेद से, इस सच्चाई से, इस फजल के बहते हुए दरिया से वाकफ हो जाएं, क्योंकि तब ही हम उसे इस्तेमाल करेंगे। उस अमीर शख्स के पास दौलत थी लेकिन वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसी तरह हमारे पास रूहानी नेमतें हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम भी उनका मज़ा नहीं चख पाएंगे। सो पालूस कहता है इफिसियों 3:16 कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे, यानी कि खुदावंद खुदा अपने जलाल, जलाल का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जब जब खुदा की हजूरी ज़ाहर होती थी बनी इसराइल कौम के दरमियान खुदा की हैकल में, हम लफ्ज़ बहुत दफ़ा स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तराने में शायद उसे कहा जाता है खुदायाए जुल जलाल। जब खुदा का जलाल बनी इसराइल कौम के दरमियान और हैकल में उजागर होता था तो वो देख नहीं सकते थे उसकी हजूरी से, इतनी पाकीज़गी ज़ाहर होती थी। सो खुदा कहता है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से, यानी कि पाक रूह के वसीला से, पाक रूह की मदद से, पाक रूह की रहनुमाई से, पाक रूह की आवाज़ से, अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। बातनी यानी कि अंदरूनी तौर पर हमारे अंदर जो कुदरत रूहुल कुद्दस की रखी है उसके बायस बहुत ही जोरावर हो जाओ। जंगे लड़ने के लिए नहीं, ये जंग खून और गोश्त की नहीं बल्कि रूहानी जंग है। आप सब मसीह के गवाह हैं जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, और आपकी गवाही फरिश्तों के सामने है। आपकी जो शान और शौकत रूहानी है, आप जो रूहानी तौर पर अमीर हैं तो दौलतमंद हैं, क्या है? फरिश्तों के सामने बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। इसलिए अपने आप को कभी भी ये ना समझे कि आप गरीब हैं। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं रूहानी तौर पर। बेशक हमारे घरों में रुपए पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन आप बहुत ही मुबारक हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। और यर्मिया नबी भी कहता है कि कवि और दानिशमंद और ताकतवर और अक्लमंद आदमी वही है जो खुदावन को जानता है। हालेलुया। मेरे साथ इस आयत को कहें और हम ख़त्म करेंगे। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मकसों में कैसी कुछ है। आज कौन कौन अपने आप को दौलतमंद समझता है? माली तौर पर नहीं, रुपए पैसे के लिहाज से नहीं, रूहानी तौर पर। आप में से कौन कौन रूहानी तौर पर दौलतमंद है? शर्माने की जरूरत नहीं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। यही बात मैं चाहता हूं, यही बात खुदावन खुदा चाहता है कि आप जानें। आज से अपने आप से कहना शुरू करें कि मैं खुदावंद की बेटी हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, उसने मुझे पाक ठहराया है, उसने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है। और जबूर 23 वाली बात को हरगिज़ ना भूलें। दाऊद ने वो अपने तख्त पर बैठकर बात नहीं लिखी जब वो बियाबानों में था, छुप रहा था मौत से, बादशाह से, अपने बेटे से, बुरे हालातों में उसने ये बात कही है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आप भी अपने तमाम हालात में कह सकते हैं, भूख में, प्यास में, तन्हाई में, अंधेरे में, उजाले में, हर तरह की फिक्रों में, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, आज के पैगाम के वसीला से जो दौलत रूहानी तौर पर तूने हम सबको बख्शी है खुदावंद, इसे मान लेने और यकीन करने की कुव्वत और ताकत दे ताकि हम शर्माएं ना बल्कि यकीन करके कहें कि हाँ हम इस जमीन पर सबसे दौलतमंद लोग हैं क्योंकि हम तुझे जानते हैं। तूने अपना नाम हमारे नाम की साथ जोड़ा है। सो आज के पैगाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।